नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू। नागरिक स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे परिवार की जानकारी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण से जुड़े 3 विधेयकों पर संसद में आज भी चर्चा जारी रहेगी। मनोनीत सदस्य हरिवंश नारायण सिंह का तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा का उपसभापति चुना जाना तय। और बीपीएससी ने कहा, शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा के लिए अगले सप्ताह जारी होगा विज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू होगा। इस चरण के तहत नागरिक स्वयं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह चरण 1 मई तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
स्वगणना की इस प्रक्रिया में नागरिक सुरक्षित वेब पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार के मुखिया का नाम और किसी भी एक सदस्य के मोबाइल नंबर से पंजीकरण कर सकते हैं। स्वगणना के बाद संबंधित व्यक्ति को एक आईडी प्राप्त होगी। प्रगणक के घर आने पर यह आईडी उन्हें उपलब्ध करानी होगी। सरकार के अनुसार स्वगणना नहीं कर पाने की स्थिति में निर्धारित अवधि में प्रगणक संबंधित व्यक्ति के घर आकर जानकारी दर्ज करेंगे। यह प्रक्रिया 1 मई तक चलेगी। इसके बाद 2 मई से मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू होगी, जो 31 मई तक चलेगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी विवरण एकत्र किए जाएंगे। इस अभियान में देश भर में 30 लाख से अधिक फील्ड वर्कर्स शामिल होंगे। जनगणना 2027 देश के इतिहास की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है। समाचार कक्ष से सविता पारीक।
लोकसभा में आज संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी रहेगी। इन तीनों विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित संविधान 106वां संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना है। 850 सीटों में से 815 सदस्य राज्यों से और 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। कल लोकसभा में इन तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि देश की 50% आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस कानून को लागू करते समय किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा।
हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं, न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूँ, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी।
प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक विधेयक को राजनीतिक रूप न दें, क्योंकि यह सभी और देश के लोकतंत्र के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अब इस विधेयक का विरोध करेंगे, उन्हें भविष्य में इसके परिणाम भुगतने होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या में कमी को लेकर विपक्ष की आशंकाओं को खारिज किया।
दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है, उसको अगर हम सोचते हैं, तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है, उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% होगी, तो शक्ति कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है।
चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने लागू किया था।
कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार।
चर्चा में भाग लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शांभवी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित कानूनों का समर्थन किया।
ये जो बिल है महज कागज का टुकड़ा नहीं, ये उन करोड़ों माताओं बहनों के आत्मसम्मान का, अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये केवल एक अमेंडमेंट नहीं बल्कि सदियों से जो उनकी तपस्या है, जो उनके संघर्ष है, उसका ये परिणाम है। ये सदियों की बंदिशों को, रूढ़ियों को तोड़ने का ऐलान है और ये पूरे देश में मातृशक्ति का हक और सम्मान देने का एक बहुत खूबसूरत सुनहरा अवसर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को बता दिया है कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट का क्या अंतर होता है।
जदयू की लवली आनंद ने कहा कि यह केवल एक कानून नहीं बल्कि देश की आधी आबादी के अधिकारों और नेतृत्व को बहाल करने का एक संकल्प है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इस चर्चा का जवाब देंगे। पटना में आज नारी शक्ति वंदन थीम पर राष्ट्रीय फन रन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुबह 6 बजे पटना के जेपी गंगा पथ पर हरी झंडी दिखाकर फन रन को रवाना किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित संशोधन विधेयकों के पारित होने पर महिलाओं की संसद और राज्य विधानसभाओं में भागीदारी बढ़ेगी।
आज का दिन 17 अप्रैल इस देश के महिलाओं के क्रांतिकारी दिन होंगे, जिस दिन 543 से बढ़कर 816 सीट लोकसभा में होंगे, उसमें से एक तिहाई सिर्फ और सिर्फ महिलाएं चुनाव जीतकर देश में राज करने का काम। बिहार में नीतीश कुमार जी ने 50% महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में दिया, इससे भी बहुत ताकत हुई है बिहार।
इस दौरान पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन विधेयक को लेकर चल रही चर्चा के समर्थन में इस रन का आयोजन किया गया है।
हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बिल को लेकर जो पार्लियामेंट हाउस में स्पेशल सेशन के माध्यम से बुलाया गया है उसके समर्थन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ जो एनडीए की सरकार है उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, कितना ठोस कदम, इतना मजबूत कदम उन लोगों ने आज हमारे लिए लिए।
आयोजन में पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू समेत लगभग 4,000 महिलाएं और छात्राएं शामिल हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्यसभा में आज उपसभापति के लिए चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा नामांकित सदस्य श्री हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने जाने का प्रस्ताव करेंगे। श्री हरिवंश ने कल उपसभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। विपक्ष की ओर से इस पद के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। इस आधार पर श्री हरिवंश का तीसरे कार्यकाल के लिए इस पद पर निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा के लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना अगले सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया इस महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।
TRE4 का नोटिफिकेशन 3-4 दिन में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने की तिथि 25-26 के आसपास रखी जाएगी। नोटिफिकेशन 3-4 दिन में प्रकाशित कर दिया जाएगा। दो प्रमुख चेंज किए गए हैं जिसको अभ्यर्थियों को ध्यान में रखना चाहिए फॉर्म भरते समय। इस बार फॉर्म भरने के समय ही 3800 जिला का च्वाइस उनको देना होगा। ऐसा प्रावधान इस बार किया गया है कि पहले आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरने का लिंक उपलब्ध होगा।
चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों में 40,882 पदों पर नियुक्ति होनी है। विशेष निगरानी इकाई ने पूर्णिया में बिहार शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता भूषण प्रसाद को 10,000 रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सहायक अभियंता मापी पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने के लिए संवेदक से रिश्वत ले रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। राजगीर खेल अकादमी में आयोजित 13वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 मैचों में जीत हासिल की। मेजबान टीम ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल की। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित पुरुष T20 ट्रॉफी में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण की टीमों ने अपने अपने मैच जीत लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर संसद में जारी चर्चा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, लोकसभा में पीएम ने सर्वसम्मति से बिल पारित कराने की अपील की, कहा परिसीमन पर किसी राज्य के साथ पक्षपात नहीं। दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, उत्तर और दक्षिण के राज्यों में कोई भेदभाव नहीं, यह मेरी गारंटी मोदी। दैनिक भास्कर लिखता है, एक्शन में सीएम सम्राट, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का अल्टीमेटम दोहराया। प्रभात खबर ने लिखा है, TRE4 में 40,882 शिक्षकों की होगी भर्ती, अगले हफ्ते से मंगाए जाएंगे आवेदन। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार विधान परिषद की सिवान सीट के लिए भी उपचुनाव का ऐलान। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने आज से शुरू हो रहे जनगणना के पहले चरण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, नागरिक स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे परिवार की जानकारी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण से जुड़े 3 विधेयकों पर संसद में आज भी चर्चा जारी रहेगी। मनोनीत सदस्य हरिवंश नारायण सिंह का तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा का उपसभापति चुना जाना तय। और बीपीएससी ने कहा, शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा के लिए अगले सप्ताह जारी होगा विज्ञापन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।